मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। आज 2 जनवरी 2019 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। 2 जनवरी 2019 यानी कि वर्ष 2019 का दूसरा दिन, लेकिन डेली ऑडियो लेक्चर का पहला दिन। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं इस शुरुआत में आप सबका अभिनंदन करता हूं और आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 6 नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 3 से 17 मार्च के बीच होने वाले क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। और अब मुझे यह कहने की जरूरत नहीं है कि अगले वर्ष, क्योंकि जब 2018 में मैं जब इसी डेट की घोषणा करता था तो जाने अनजाने मेरे मुंह से यह निकलता था कि आने वाले मार्च या 2019 के मार्च। तो अब हम 2019 में प्रवेश कर चुके हैं, इसलिए अब कह सकते हैं 3 से 17 मार्च के बीच होने वाली क्लासेस। तो दोस्तों इसमें जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है उन नौजवान साथियों के नाम हैं: केशव कुमार बेगूसराय बिहार से, उम्मेद सिंह पंवार इंदौर मध्य प्रदेश से, भीम पासवान गया बिहार से, प्रभात रंजन आपका गांव है बनियाडीह जिला गोड्डा झारखंड से, पुष्पेंद्र पटले आपका गांव है देवरी मेटा जिला बालाघाट मध्य प्रदेश से, और घनश्याम आप हैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से। तो केशव, उम्मेद, भीम, प्रभात, पुष्पेंद्र और घनश्याम आप सभी 6 साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों स्वागत के बाद अब मुझे आप सबको एक महत्वपूर्ण सूचना देने के लिए कहा गया है, और वह सूचना यह कि अभी तक जो रजिस्ट्रेशन हो रहे थे वो डिस्काउंटेड सीट्स के लिए हो रहे थे, और रजिस्ट्रेशन कराने वाले स्टूडेंट को पर सीट प्रत्येक विद्यार्थी को स्टूडेंट को 2,000 रूपये कम देने पड़ रहे थे। ध्यान होगा आपको कि कुछ दिनों पहले मैंने या आप सबको यह सूचना दी थी कि अब उसके लिए कुछ ही सीट्स बाकी हैं। अभी यह तो मैं घोषित नहीं करने जा रहा हूं कि सीट्स खत्म हो गई हैं, लेकिन अब उसकी डेट निश्चित कर दी गई है। और अब ये जो डिस्काउंटेड सीट्स हैं ये केवल आपको 5 तारीख तक अवेलेबल रहेंगे। आज 2 तारीख है, आज 3 तारीख, 4 तारीख और 5 तारीख। 5 तारीख के बाद जो डिस्काउंटेड सीट्स हैं वो खत्म हो जाएंगी, और फिर जो नॉर्मल रूटीन की जो सीट्स होंगी उसके तहत रजिस्ट्रेशन जारी रहेंगे। तो आप में से वे जो इस डिस्काउंट का लाभ लेना चाह रहे हैं, जो कम नहीं है मित्रों, कुल जो आपकी फीस होती है उसमें से 2,000 रूपये की आपको छूट मिल रही है, उनको मेरा सजेशन है कि अब उन्हें फाइनल निर्णय लेकर के डिसाइड कर लेना चाहिए कि अगर उन्हें क्लास में आना है तो बेहतर है कि वो इस लाभ का लाभ उठाएं। हाँ, और अगर वो अभी निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है तो फिर यह उनके अपने ऊपर है। तो मित्रों यह सूचना है, और सूचना यह है कि जो डिस्काउंटेड सीट्स हैं वे केवल 5 तारीख तक के लिए ही अवेलेबल हैं। आइए अब हम लोग न्यूज पर बात करते हैं। मुख्य विषय के तहत मैं आज आपसे अर्थव्यवस्था के चक्र पर बात करूंगा, लेकिन इससे पहले एक जो छोटी सी खबर है, लेकिन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यह छोटी नहीं है, उसके बारे में थोड़ी सी आपको झलकियां देना चाहूंगा। और मित्रों यह है खासकर नारी अधिकार को लेकर, महिलाओं की स्थिति पर आप अपने अनसॉल्व्ड पेपर उठा करके देखिए, मेंस में हर साल एक दो क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं और पूछे ही जाते रहेंगे, और बकायदे सिलेबस में ये मेंशन भी किया हुआ है, राइट? अभी आप देखिए कि महिला अधिकारों को लेकर के हमारे सामने दो सबसे बड़ी घटनाएं हो रही हैं, और इसके लिए आपको एक सतर्क दर्शक बन जाना चाहिए। नंबर 1, अभी 3 तलाक बिल आपको मालूम है लोकसभा से पारित हो चुका है, पिछले सप्ताह पारित हुआ है, और अब यह राज्यसभा में है। राज्यसभा में इस पर बहस होगी, और बहस होने के बाद देखिए क्या होता है। आप जानते हैं कि राज्यसभा में अभी जो सरकार है उसका बहुमत नहीं है, एनडीए जिसे हम कहते हैं उस पार्टी का बहुमत अभी राज्यसभा में नहीं है, और यह जो बिल है ये एक्ट बने इसके लिए बहुत जरूरी है कि वो राज्यसभा से भी पारित हो, और वहां बहुमत है नहीं। देखते हैं कि जो दूसरी पार्टियां हैं वो क्या स्टैंड लेती हैं। लेकिन अभी जो राजनीतिक पर्यवेक्षक हैं वो ये मानकर चल रहे हैं कि इसके पारित होने की संभावना थोड़ी कम है, क्योंकि जो दूसरी पार्टी है, जैसे लोकसभा में जब ये इस बिल पर मतदान हो रहा था तो कांग्रेस बायकॉट कर गई थी, बाहर चली गई थी। उनका कहना है कि इसे जो है ना प्रवर समिति को सौंप देना चाहिए, संयुक्त पार्लियामेंट्री कमेटी को सौंप देना चाहिए, इस तरह की वो डिमांड कर रहे हैं। तो बट नेचुरल है कि जब वो लोकसभा में इससे अलग रहे हैं तो शायद राज्यसभा में भी अलग रहे हैं, दूसरी पार्टीज भी उस तरह से कुछ कुछ अपनी तरफ से संशोधन की मांग कर रही हैं। लेट अस सी क्या होता है, तो इस पर आपकी नजर होनी चाहिए। दूसरा जो मामला है वो है सबरीमाला मंदिर का। आप देख रहे हैं कि केरल में जो सबरीमाला का मंदिर है जिसमें पर्टिकुलर एज की महिलाओं का प्रवेश निषेध है, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बकायदे यह आदेश दिया, अपने फैसले में कहा कि नहीं, मंदिर के द्वार इन महिलाओं के लिए बंद नहीं किए जा सकते, ये हमारे संविधान के जो मौलिक अधिकार है उनके विरुद्ध है। इसके बावजूद अभी तक वहां महिलाओं का प्रवेश नहीं हो सका है, और आपने आज न्यूज में कल की न्यूज में सुना है कि किस तरीके से महिलाओं ने एक बहुत लंबी श्रृंखला बनाई है उसमें प्रवेश पाने के लिए, एक विरोध प्रदर्शन का एक तरीका है, अपनी मांग को रखने का वो एक तरीका था, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया है। एक बड़ी विचित्र सी बात है यहां इसके इस दृष्टि से, मैं आपको दैनिक भास्कर का एक एडिटोरियल कमेंट आज प्रोवाइड भी कर रहा हूं कि अगर हम राजनीतिक दृष्टि से इस मामले को देखें, सबरीमाला और तीन तलाक वाले मामले को, तो आप देखें कि तीन तलाक के पक्ष में एनडीए है, और एनडीए का जो सबसे बड़ा घटक है वो है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के लिए तीन तलाक विधेयक लेकर आई है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि आप ऐसा कीजिए, तो वो तीन तलाक विधेयक लेकर के आई है, और यहां मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के पक्ष में वो खड़ी दिखाई देती है। लेकिन जब सबरीमाला मंदिर का मामला आता है तो वहां वह उन महिलाओं के साथ खड़ी दिखाई नहीं देती, उसकी मान्यता कुछ वहां बदल जाती है कि नहीं ये आस्था की बात है और आस्थाओं में न्यायालय को दखल नहीं दिया जाना चाहिए, वहां उसका यह स्टैंड हो जाता है और यहां उसका यह स्टैंड है। और यह केवल एक ही पार्टी के साथ नहीं है, याद रखिए केवल एक ही पार्टी के साथ नहीं है, यह मैं उस बात की चर्चा कर रहा हूं जो बकायदे आपको दैनिक भास्कर के आज का जो एडिटोरियल है उसमें पढ़ने को मिलेगा। यह लगभग लगभग मित्रों एक राजनीतिक दलों की जो अपनी कार्यप्रणाली होती है, उनकी अपनी जो विचारधारा होती है, वो कुछ होती ही इस तरीके के है कि अभी समय की क्या मांग है, और समय की मांग के पीछे जो मुख्य मांग हुआ करती है एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में पॉलिटिकल पार्टी के लिए, वो होती है वोट्स, कि हम कोई ऐसा कदम न उठाएं कि जो लोग हमें वोट देते आ रहे हैं वो हमसे छिटक जाएं, वोट देना बंद करें। और दूसरी बात यह होती है कि यदि संभव हो तो हम ऐसे कदम उठाएं कि जो लोग हमें वोट नहीं दे रहे हैं वो हमें वोट दें। इसे ही कहते हैं वोट की राजनीति, जहां पर सच पूछे तो राजनीतिक दलों के अपने सिद्धांत, अपने प्रिंसिपल्स बहुत कमजोर पड़ते हुए दिखाई देते हैं, और यही है पॉलिटी। राइट फ्रेंड्स, तो आइए अब मैं मुख्य विषय पर आता हूं, और वह है अर्थव्यवस्था का चक्र। दरअसल मैंने इस विषय को एक आर्टिकल के संदर्भ में चुना है, और वो आर्टिकल मैं आपको प्रोवाइड भी कर रहा हूं जो आज के दैनिक जागरण में छपा है, और इसे लिखने वाले हैं डॉक्टर भरत झुनझुनवाला। और आप जानते हैं कि डॉक्टर भरत झुनझुनवाला बहुत अच्छे तरीके से न केवल लिखते ही हैं बल्कि बहुत ही मूलभूत मुद्दों पर जाकर के उसे समझाते भी हैं। ये आर्टिकल आप लोग पढ़िएगा, इस आर्टिकल को आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकें, और साथ ही जो इकोनॉमी की तैयारी होती है, इकोनॉमिक्स की तैयारी होती है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से, उसमें भी आपको मदद मिल सके, इस आधार पर मैंने ये टाइटल चुना है अर्थव्यवस्था का चक्र। यानी कि चाहे कोई देश, भारत हो, डेवलप्ड कंट्री हो, उसमें जो इकोनॉमी का जो साइकिल होता है, अर्थव्यवस्था का जो चक्र होता है, वो कैसे चलता है। बेसिकली दोस्तों अर्थव्यवस्था एक प्रकार का वृत्त होता है, गोल सर्किल में होता है, सर्किल ही होता है, वो लीनियर नहीं होता, लाइन की तरह नहीं होता, वो गोल घेरे की तरह होता है। गोल घेरे की तरह के शेप का मतलब है कि जो चीज एक पर्टिकुलर पॉइंट से शुरू होती है, वो घूमती 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 आकर के फिर से उसी पर्टिकुलर पॉइंट से जुड़ जाती है और इसके बाद वो चक्र लगातार चलता रहता है। इसे हम कहते हैं गोल घेरा। इसे इस तरीके से आप समझिए कि जैसे मान लीजिए कि एक अर्थव्यवस्था है, भारत की एक अर्थव्यवस्था है और आज उसकी एक अर्थव्यवस्था जैसी भी है वो है, अभी हमारे सामने उसका एक स्वरूप है। हम अभी लगभग लगभग 7% के एनुअल ग्रोथ पर है, 7% की वार्षिक वृद्धि दर जीडीपी जो आप लोग अखबारों में पढ़ते रहते हैं। अब मान लीजिए सरकार चाहती है कि नहीं, इसमें बढ़ोतरी की जानी चाहिए, जीडीपी में बढ़ोतरी की जानी चाहिए, क्योंकि देखिए जीडीपी आप अपने देश के कुल उत्पादन में वृद्धि कर रहे हैं, कुल उत्पादन में वृद्धि कर रहे हैं, राइट। तो बट नेचुरली कि जब आप उत्पादन में वृद्धि करेंगे तो आपके देश की इनकम बढ़ेगी, और देश की इनकम बढ़ेगी का क्या मतलब है, लोगों की इनकम बढ़ेगी। तो स्वाभाविक है कि जब आपको अपने देश की इनकम बढ़ानी हो, लोगों की इनकम बढ़ानी हो, तो आप उसको अर्थशास्त्र की भाषा में जीडीपी बढ़ाइए। अब आप देखिए कि जीडीपी काम कैसे करती है, काम कैसे करती है। जो इसकी शुरुआत होती है, याद रखिए इसकी शुरुआत जो मैंने शुरुआती बिंदु कहा है वो होती है मांग से, डिमांड से। कि अब देश की अर्थव्यवस्था को आप एक बाजार मान लीजिए, है ना, अर्थशास्त्र कुछ नहीं है, बाजार का ही शास्त्र है। तो शुरुआत होगी मांग से, किसी भी चीज की एक मांग पैदा होगी, लोग मांगेंगे कि भाई हमें यह चीज चाहिए। अब वो मांग क्यों पैदा होगी उस पर हम नहीं जा रहे हैं। तो जब किसी चीज की मांग जनरेट होगी तो स्वाभाविक है कि उस मांग को पूरा करने के लिए कुछ लोग आएंगे, सामने आएंगे। तो चलिए हम इस सामने आने वाले में कह देते हैं कि उद्योग खोला गया, राइट, उद्योग खोला गया, लोगों ने मांग की, मांग करने के कारण उस मांग को पूरा करने के लिए एक उद्योग खुला, एक फैक्ट्री एस्टैब्लिश हो गई। जब वो फैक्ट्री एस्टैब्लिश हुई तो देखिए अब क्या होगा कि फैक्ट्री एस्टैब्लिश करने के लिए कुछ मांग जनरेट होंगी। फैक्ट्री बनाने के लिए ईंट चाहिए, सीमेंट चाहिए, लोहा लंगड़ चाहिए, फिर मजदूर चाहिए, राइट। तो अब आप देखिए कि उस एक फैक्ट्री ने फिर से इन चीजों की मांग जनरेट कर दी, भैया हमें सीमेंट चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, और साथ ही में श्रम की डिमांड हो गई। तो अब जब श्रम की डिमांड हुई और इन चीजों की मांग हुई तो अब आप देखिए कि सीमेंट की फैक्ट्री भी लग रही है, फिर आपके लोहे की भी फैक्ट्री लग रही है, फिर ईंट के भट्ठे भी खुल रहे हैं। तो अब ये भी अपनी अपनी डिमांड जनरेट कर रहे हैं, सीमेंट की फैक्ट्री को भी अपने लिए चीजें चाहिए, लोहे की फैक्ट्री, इस्पात की फैक्ट्री के लिए भी चाहिए, उनको भी फिर मजदूर चाहिए, ठीक है। अब डिमांड बाजार में आप देखिए कि कैसे डिमांड इज क्रिएटिंग डिमांड फर्दर, जो मांग है वो आगे मांग को पैदा कर रही है। अब ये जो मजदूर हैं ये कमाई करेंगे, इनको वेतन मजदूरी मिलेगी, वेतन मिलेगा, अधिकारी भी होंगे उसमें, इंजीनियर्स भी होंगे उसमें। तो जब ये इनको पैसा मिलेगा तो ये पैसा का करेंगे क्या, सीधी सी बात है कि उस पैसे को बाजार में जाएंगे लेकर के और चीजें खरीदेंगे। तो जब वो दूसरी चीजें खरीदेंगे तो उन चीजों की मांग फिर से जनरेट होगी, फिर से उस मांग को पूरा करने के लिए फिर से नई नई चीजें आएंगी, मतलब बाजार में मनी का फ्लो बढ़ता चला जाएगा और इस तरीके से हमारी आर्थिक गतिविधि तेज होती चली जाएगी। और चूंकि मांग बढ़ती चली जा रही है तो स्वाभाविक है कि जो उद्योगपति हैं उनको लगेगा कि यार ये तो बहुत अच्छा मौका है, अभी इसकी फैक्ट्री लगा लो, अभी इसकी फैक्ट्री लगा लो। तो वो इस बात के लिए प्रेरित होंगे कि इन्वेस्ट किया जाए, निवेश किया जाए, बाजार में पैसा लगाया जाए। तो अब आप देखिए कि दो चीजें लगातार अब साइकिल में आ गई, वो हुआ ये कि आप मांग कर रहे हैं और उस मांग की पूर्ति हो रही है, बस यही साइकिल, मांग पूर्ति, मांग पूर्ति, मांग पूर्ति, और अर्थव्यवस्था का चक्र उससे फिर चलने लगता है। ये जितना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा वैसे ही अर्थव्यवस्था तेजी के साथ एक चक्र में घूमने लगेगी, और जब वो तेजी के साथ घूमने लगेगी, जितनी तेजी के साथ अर्थव्यवस्था का चक्र घूमेगा जीडीपी में उतनी ही अधिक वृद्धि होगी। तो मित्रों मैं बहुत ही सामान्य तरीके से आपको समझा पाया हूं क्योंकि वक्त का तकाजा यही था कि मैं इसे बहुत विस्तार पर न जाऊं। हाँ, मेरे जो क्लास के स्टूडेंट रहे हैं उनको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि आप याद करने की कोशिश कीजिए कि मैंने बैंकिंग सिस्टम के माध्यम से, रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से, एग्रीकल्चर के माध्यम से, सीजनल बाजार के माध्यम से और बहुत बहुत तरीकों से आप लोगों को मांग और पूर्ति के सिद्धांत के बारे में बताने की कोशिश की थी। आप उन्हीं लेक्चर्स को याद रख करके और जो आपको नोट्स भेजे गए हैं उस नोट्स में से कुछ इसी से जुड़े हुए चैप्टर्स को पढ़ करके अब आप डॉक्टर भरत झुनझुनवाला का यह लेख पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि यह लेख बहुत आसान है और बहुत अच्छे से आपके समझ में आ गया है। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। जहां तक न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स का सवाल है, मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं और उन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं: अमित कुमार प्रयागराज उत्तर प्रदेश से, अब्दुल सलाम कटिहार बिहार से, अमरजीत यादव, प्रतीक सिंह भिवंडी महाराष्ट्र से, अब्दुल तवाब कासगंज उत्तर प्रदेश से, याकूब खान पोखरण राजस्थान से, तनुप्रिया सिंह मोहाली पंजाब से और साध्वी सिंह, आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, इसी के साथ ही नए वर्ष के आज पहले दिन के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करने के आप सबसे इजाजत चाहूंगा। मेरा अभिवादन स्वीकार करें। नमस्कार।